ओम शांति। हम चाहेंगे कि आप हमारे बाद सभी मिलकर कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस शांतिवन परिसर में मेरे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रातःकालीन सत्र इस समय राजयोग से संबंधित होते हैं, जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय है। हम सभी योगी हैं अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सभी योगी हैं। क्यों हम सभी योगी हैं? क्योंकि किसी न किसी के साथ हमारा योग अवश्य है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि योग का अर्थ, शब्द जो योग है उसका अर्थ लंबा चौड़ा नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ बहुत सिंपल है। युज शब्द जो संस्कृत में है, उस शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। कोई भी प्रकार के जोड़ को योग कहा जाता है। जैसे योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, तो वियोग का अर्थ समझना मुश्किल नहीं है। वियोग माना दूर जाना, अलग होना। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना, संबंध जोड़ना, एक प्रकार का मिलाप, उसी को हम योग कहते हैं। इसलिए योग को समझना मुश्किल नहीं है। और अगर हम देखें, तीन रूप से योग होता है। एक है भौतिक, भौतिक रूप से वस्तुओं का जोड़ होता है। एक प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं, वो भी योग शब्द से जुड़ा हुआ है। दो चीजों को जोड़ते हैं और तीसरी चीज पैदा करते हैं। तो A प्लस बी इक्वल टू सी, वो जो प्लस साइन है वो योग हुआ। बिजली की तार को भी हम जोड़ते हैं पावर हाउस की तार से, वो भी योग है। पर दूसरे प्रकार का योग है मानसिक स्तर। मन से किसी को याद करते हैं, वो भी योग है। इसलिए कहा कि आप सब योगी हैं, क्योंकि मन से सदा ही कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। तो जिसके विषय भी सोचते हैं उसके साथ योग है। लेकिन जो योग की बात हम अभी करेंगे वो है आध्यात्मिक स्तर का योग। वो आध्यात्मिक स्तर का योग किसको कहेंगे? जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ये आध्यात्मिक स्तर का योग है। अब भौतिक स्तर को समझना मुश्किल नहीं है। आप रेडियो ऑन करते हैं और रेडियो की सुई घुमाते हैं, कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो उस रेडियो स्टेशन को हासिल करने लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए अपनी सुई को आप उसी मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो सब उससे संबंधित जो भी बातें होती है उसके आधार से आप सुई को वहां रखेंगे, तुरंत आपको वो रेडियो स्टेशन चाहे हजारों मील की दूरी पर हो पर आपका रेडियो रिसीवर अच्छा स्ट्रांग है तो वो आवाज आपका रेडियो रिसीवर कैच करेगा। तो वो भी एक योग है। हम दो तारों का मिसाल दिया, बिजली घर कितना भी दूर होगा लेकिन आपको यहाँ बिजली मिलेगी क्योंकि आपने बिजली घर से कनेक्शन किया है। तो जिससे योग होता है उसका गुण मिल जाता है। योग को हम इस रूप में समझेंगे, हम दूध में चीनी मिलाते हैं, दूध और चीनी का योग होने से मीठा दूध हो जाता है क्योंकि चीनी का गुण दूध में आ जाता है। तो ये स्थूल रूप से योग समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा इनसे और ऊंचा है। आप कोई दुख की घटना याद करते हैं, बहुत पुरानी घटना होगी वो दुख की, ऐसी बड़ी ट्रेजेडी आपके जीवन में आई होगी जिसके कारण बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आज भी अगर आप उसको याद करते हैं तो उसका दुख आपको अनुभव होने लगेगा। हालांकि अभी न वो व्यक्ति है, न परिस्थिति है, न कोई ऐसा प्रसंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने उस घटना को याद किया, उन व्यक्तियों को याद किया तो ये भी एक योग हो गया और तुरंत आपको वो दुख की महसूसता जो उस समय हुई थी वो आपको आज भी होने लगेगी। उसकी विपरीत सुख की घटना भी ऐसी है। सुख की कोई घटना आपको याद आ गई, आज भी वो याद करते आपका चेहरा मुस्कुराने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं क्या बात है आज बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? आप कहेंगे अरे भाई कुछ याद आ गया। वो दुख है चेहरे पर दिखाई देता है, मन का प्रतिबिंब है ये चेहरा, तो तुरंत वो दुख का भी अनुभव होता है। तो लोग पूछेंगे क्या बात है इतना दुख क्यों, आप ऐसे व्यथित क्यों हैं? तो कहेंगे कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात याद आ गई। तो वो भी एक योग है। हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, मान लो वो व्यक्ति उस समय पहुंच गया, उसी समय आ गया, हम याद ही कर रहे थे तो हम उसी समय कह देते अरे क्या योग था मेरा, आपको अभी अभी याद किया और आप आ गए। तो याद भी एक योग है और उस हिसाब से हम सब योगी हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर है उस आध्यात्मिक स्तर को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध ये सबसे ऊंचा योग है, इसलिए इसको राजयोग कहा। तो सबसे ऊंचा संबंध, सबके सबसे ऊंचे के साथ संबंध, पर वो तब संबंध है जब हम उस आत्मिक स्थिति में होंगे, क्योंकि शरीर के साथ संबंध नहीं है, परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है, शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है, पंच तत्वों से ये शरीर बना है और अंत में पंच तत्वों को ही वापस लौटाना है ये शरीर। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे, भगवान का प्यारा हो गया, भगवान के पास गया, तो जो जहां से आता उसको वापस वहीं जाना है। इसलिए राजयोग अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना ये राजयोग है, ये आध्यात्मिक स्तर है। अब इस स्तर तक पहुंचने के लिए क्या क्या बातें हमें धारण करनी होगी वो तो हम बताएंगे, लेकिन क्यों इसको राजयोग कहते हैं? सबसे पहली बात, ये हमको राजा बनाता है, राजयोग अर्थात जो हमें राजा बनाए। अब किसका राजा? दूसरों का राजा नहीं, पहले अपने इंद्रियों का राजा। हम अपने इंद्रियों को अपने वश में कर सके, राजा माना प्रजा को अपने वश में करना, वर्क करने वाला। तो हम अपने इंद्रियों के राजा बने, फिर अपने मन के भी राजा बने। हम जो सोचना चाहे वो ही सोचें, जो नहीं सोचना है वो नहीं सोचें। अब वो राजा कहाँ तक है, इंद्रियों के राजा कहाँ तक है? इंद्रियां भी धोखा दे देती है। हम कुछ बोल देते हैं फिर कहते, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए न इंद्रियों के राजा है न मन के राजा है। जो सोचना चाहिए था वो तो मन में आता ही नहीं है, और जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते रहते हैं। लेकिन राजयोग हमें वो मन का भी राजा, तन का भी राजा, और साथ साथ सबके दिलों का भी राजा। कोई भी किसी को हथियारों के बल से, बाहुबल से नहीं जीत सकता है, लेकिन उनका दिल जरूर जीत सकता है और उनको सरेंडर करा सकता है। इसलिए सबके दिलों का राजा बन सके अगर हम, तब कहेंगे हम सच्चे राजयोगी हैं। और अगर सबका दिल आप जीत सको, वो तो अपने गुणों से ही जीतेंगे। गुणों से ही दूसरों का दिल जीत सकते हैं। और अगर सबका दिल जीत सको अपने गुणों से, तो फिर आप विश्व को भी जीत सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विश्व का भी राज्य ले सकते हैं। तो राजयोग से वो ऊंचा लक्ष्य हमें मिलता है, जिसके लिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। मानव देव बन जाए, पर वो देव कैसे बनेगा? जो हम थे, हम सब देव थे, लेकिन आज अगर असुर कहें तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि वो आसुरी लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए राजयोग का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो क्या है राजयोग? उस सर्वोत्तम, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ मन की तार जोड़ना, जिसको भगवान ने कहा, हे अर्जुन इस मन को मेरे में लगाओ, इस मन को मेरे में लगाओ। और अर्जुन की यही शिकायत थी, ये मन तो बड़ा चंचल है, मन तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, इस मन को वश करना बहुत मुश्किल है, ये क्यों शिकायत होती है? वैसे तो दुख में तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं। कबीर ने कितना सुंदर कहा, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। पर उसके बाद का वाक्य और भी सुंदर है, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए, सुख में याद ना किया दुख में करता याद रे। सुख में भी उनकी याद हो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। जैसे हम इस वातानुकूल हॉल में बैठे हैं, ठंडी हवा मिल रही है, बाहर तो कितनी गर्मी होगी, लेकिन हमें वो गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि वातावरण को हमने अपने अनुकूल बना लिया है। तो मन को अगर हम अपने अनुकूल बना सकें, तो दुख का अनुभव कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये मन की स्थिति है। चाहे दुख अनुभव करो, चाहे सुख अनुभव करो, अगर दुखद विचार मन में लाएंगे तो दुख की अनुभूति होगी, सुखद विचार लाएंगे मन में सुख की अनुभूति होगी। तो राजयोग हमें वो ऊंचे से ऊंची विधि बताता है, जिस ऊंचे से ऊंची विधि से हम मन को उस परमात्मा में लगा सकते हैं। अब वो आपको बताएंगे आगे और सत्रों में। और केवल विधि ही नहीं, लेकिन जो प्राप्ति है वो प्राप्ति भी सबसे ऊंची है। प्राप्ति भी सबसे ऊंची है। सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे? आज किसी के पास बहुत धन है, संपत्ति है, मान है, शान है, वैभव है, पद है, बहुत कुछ है, मान लो वो सब कुछ होते हुए भी उनसे हम अगर पूछते हैं, आपके जीवन में अभी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप कुछ ऐसी बात है जो चाहते हैं अभी भी जीवन में, तो जो संतुष्ट व्यक्ति होगा वो कहेगा, बहन जी हमको संसार का कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान की दया से है। फिर भी कुछ चाहिए पूछेंगे तो कहेंगे, बस बहन जी शांति चाहिए, बस इतना ही। तो सबसे ऊंची प्राप्ति क्या हो गई? शांति। फिर पूछेंगे, अच्छा और? तो कहेंगे, बस आपकी दुआएं चाहिए, आपकी आशीर्वाद चाहिए, है ना। संतों से यही पूछते हैं ना, कोई चीजें थोड़ी मांगते हैं, आशीर्वाद चाहिए, दुआ चाहिए। तो सबसे ऊंची चीज क्या हो गई? सबसे ऊंची चीज दुआ, आशीर्वाद, शांति, खुशी, प्रेम, ये सबसे ऊंची प्राप्ति है। तो राजयोग से ये प्राप्ति होती है, राजयोग से ये प्राप्ति होती है, ये सारी प्राप्तियां राजयोग से होती है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। और इन प्राप्तियों के आधार से हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसीलिए राजयोग क्या है? राजयोग सबके लिए है, ऐसे नहीं कि फलाने धर्म के लिए नहीं है, फलाने धर्म के लिए। राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है और हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन कैसा जिए ये तो सभी चाहते हैं, हमारा जीवन सुखमय चाहते हैं, कोई भी अपना जीवन दुखमय नहीं चाहता है। जीवन में दुख हो, अशांति हो, परेशानियां हो, चिंताएं हो, न जाने क्या क्या कलयुगी दुनिया में मनुष्य अनुभव करते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं। हम यही चाहते हैं जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये सब हो, यही चाहते हैं ना। तो ये सब अगर है तब जीवन जीने की कला है, कला आती है। किसी ने ठीक कहा, व्हाट इज लाइफ, तो कई वो लिस्ट बना के दिए, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? एक स्ट्रगल है, एक युद्ध है। कितनी गलत बात है ये। जीवन तो प्रभु की देन है, जीवन तो अगर मानव जीवन है वो तो हीरे तुल्य है, लेकिन हम कहीं उसे कौड़ी तुल्य बना रहे हैं। तो कैसे ये जीवन, मानव जीवन हीरे तुल्य बने, वो हमें अवश्य राजयोग सिखलाता है। तो राजयोग को समझना है तो उसके लिए पहले खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक हमने खुद को नहीं पहचाना है तब तक परमात्मा से भी मन नहीं लगेगा परमात्मा में। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। तो जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो हम कहते हैं कि मन चंचल है, मन नहीं लगता, क्योंकि हम अपने आप को देह समझ रहे हैं। इसीलिए भगवान ने दो शब्द दिए, गीता में आते हैं, जब अर्जुन ने शिकायत की मन नहीं लगता, तो भगवान ने कहा दो कदम है मन को वश में करने के लिए, एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। तो कई लोग समझते वैराग्य माना संसार छोड़ देना, संसार छोड़ना नहीं है। वैराग्य माना इस देह के जो आकर्षण है, इस आकर्षण से दूर जाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करना। देह के आकर्षण के कारण हम अपने आप को जो देह समझ बैठे हैं, इसलिए मन देह से संबंधित जो बातें हैं वही सोचता है मन। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान, परिस्थितियां वही मन में आती है, फिर कहते हैं मन तो चंचल है, दौड़ता रहता है। इसलिए उनसे वैराग लाने के लिए देह से ही मैं अलग शक्ति हूं, इसको अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए जैसे बताया ना, जब आत्मा इस संसार में आई, शरीर मिला, ये सब देह के संबंध पहले तो थे ही नहीं। शरीर मिला, ये सब संबंध मिले, कर्मों अनुसार। और आत्मा निकली, शरीर के संबंध खत्म, हिसाब किताब पूरा। इसीलिए स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा कदम है परमात्मा को पहचानना भी जरूरी है। किसमें मन लगाना है? एक कुमारी है, उसकी सगाई करनी है, जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब पता ही नहीं है कौन होगा जीवन साथी, तो मन तो भटकेगा ना। इसलिए अनेकों में मन जाएगा तो माँ बाप को ख्याल होता है, भाई लड़की की जल्दी शादी कर लो, हाँ जल्दी कर लो, ठिकाने आ जाए मन। तो परमात्मा के लिए भी ये ईश्वर है कौन ये पता ही नहीं, तो मन भटकेगा ना। तो परमात्मा की पहचान भी जरूरी है, वो राजयोग से मिलती है। और तीसरा कारण है कि अगर ये पहचान मिल भी गई, खुद की भी और ईश्वर की भी, तो तीसरा एक विरोध, एक बीच में विघ्न आता है, वो है मन इतना मैला हो गया है। अब उस मैले मन में ईश्वर को स्थान देना कैसे होगा? दूध को रखने लिए पात्र कितना शुद्ध चाहिए? अगर पात्र शुद्ध नहीं है, चाहे खटाई हो, चाहे मैल हो, कुछ भी हो, तो वो दूध पीने योग्य नहीं होगा, क्योंकि दूध सफेद है। तो ईश्वर की याद इतनी ऊंची चीज है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ऊंचे से ऊंचा है, परम पवित्र है। अब उस परम पवित्र को मन में स्थान देने के लिए मन का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है। इसलिए कई विधियां अपनाई जाती है मन के शुद्धिकरण के लिए। अब ये तीन कारण मन का ईश्वर में न लगने का है, उनका निवारण हमें राजयोग देता है। तो राजयोग वास्तव में क्या है? अगर हम कहेंगे राजयोग ये ज्ञान योग है, ज्ञान के आधार पर योग है। जो हम प्रश्न जीवन में पूछते आए, मैं कौन, मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं इस जगत में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां जाना है, कौन है ईश्वर, कैसे मिल सकता हूं, क्या मिलेगा, आदि आदि कितने प्रश्न मन में उठते हैं, इन सब का जवाब ज्ञान योग में मिलता है। और राजयोग से अलग नहीं है वो, क्योंकि ज्ञान चाहिए परमात्मा में मन लगाने के लिए भी। और जब ये ज्ञान मिल जाता है, फिर तो बड़ा सहज है, हमें परमात्मा कोई कष्ट नहीं देते। जैसे एक बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, कोई कष्ट थोड़ी उठाता है पिता को याद करने लिए। तो परमात्मा भी तो हमारा पिता है ना, केवल पिता नहीं है, सर्व संबंध है हमारा ईश्वर के साथ। देहधारियों से तो फिर भी एक संबंध होगा, लेकिन परमात्मा के लिए तो सर्व संबंधों का वर्णन है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसीलिए वो सहज योग है। फिर इसके बाद ये बुद्धि योग है। बुद्धि, बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को वश में रखे। अभी उल्टा हो गया, इंद्रियां मालिक हो गई है, वो मन को गुलाम बना चुकी है, और मन फिर बुद्धि को दबा देता है। इसलिए कहते हैं मन खाता है। क्यों मन खाता है? क्योंकि मन ने बुद्धि को दबा दिया, बुद्धि जो सही निर्णय दे रही है उसको दबा देते हैं, और इंद्रियों के वश मन चलता रहता है, इसीलिए मन इतना चंचल हो गया है। तो इसलिए राजयोग माना ज्ञान योग, सहज योग, बुद्धि योग, कर्म योग भी हम अलग नहीं करेंगे राजयोग से, क्योंकि कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म रे कर्म ने वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। हर क्रिया एक कर्म है, हम कर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? श्वास लेना भी कर्म है ना, बैठना उठना चलना फिरना खाना पीना, ये सब कर्म है। जो शरीर है तो ये कर्म है, लेकिन वो हर कर्म परमात्मा की याद में हो। हथ कार दे, हाथ आपका कार्य करे, दिल यार दे, दिल उस परमात्मा की तरफ हो। इसलिए कर्म को त्यागना नहीं है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है। इसलिए कहा कि कर्म का फल जो है वो ईश्वर पर छोड़ दो, आप चिंता मत करो, आप अच्छा कर्म करते जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो जब ये हम समझ लेते हैं तो कर्म योग को हम अलग नहीं करते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है, यही जीवन जीने की कला है। मनुष्य तो चलते चलते गिर जाते हैं और कोई तो रस्सी पर भी नहीं गिरता है, कला है ना उसमें। इसलिए कर्म योग माना उस कर्म करते परमात्मा से योग हो तो कभी भी वो कर्म गलत नहीं होगा, और सफलता न मिले ये असंभव, मिलेगी अवश्य, अगर नहीं भी मिली कोई बात नहीं, उसमें भी कोई कल्याण होगा, कोई राज होगा, दुखी नहीं होते हैं। और जहां कर्म योग है वास्तव में भक्ति योग भी दूर नहीं है उससे। भक्ति माना ईश्वर से प्रेम, इतना प्रेम हो जाता ईश्वर से जो हम और किसको याद ही नहीं करते, केवल उनको ही। और जहां ये भक्ति योग है वहां ही संन्यास योग है। संन्यास माना बुराइयों का संन्यास, विकारों का संन्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का संन्यास। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ देना, ये नहीं राजयोग सिखाता है, पर बुराइयों का विकारों का संन्यास करके जैसे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है वैसे ही हमें रहना है। तब कहेंगे हमारा सच्चा भक्ति योग भी है, संन्यास योग भी है, फिर समत्व योग, योग ऑफ बैलेंस, हर परिस्थिति में संतुलन। केवल सिर पर बैलेंस नहीं करना है, सबको नहीं आएगा शीर्षासन, लेकिन सिर का बैलेंस, मन विचलित न हो कोई भी परिस्थिति आए, उसको कहेंगे राजयोग। इसलिए संसार के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी धर्म जाति आदि का हो, वो ये राजयोग का अभ्यास कर सकता है। इसमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है, और वो आत्मा आपको सही मार्ग दर्शाती है, लेकिन आप उस आवाज को दबाते हो, इसलिए गलत कर्म हो जाते हैं। इसलिए राजयोग का अभ्यास कौन कर सकता है ये हमें बताया गया। तो इसलिए मैं कौन हूं, ये इतनी बड़ी पहेली है जो आदि से ये पहेली चलती आई है। बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी ये प्रश्न किया, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो योगी कौन है, साधक कौन है, अवश्य उसे समझना होगा। चलो कोई अपना परिचय कुछ भी दे दे, लेकिन वो सारा परिचय उनका विनाशी है, इस शरीर से संबंधित है। लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछा जाए आप कौन हो, तो फिर लास्ट में यही कहेगा मैं तो मनुष्य हूं। लेकिन मनुष्य का भी मतलब क्या है, मनुष्य केवल हड्डी मांस का पिंजरा तो नहीं है ना, उसमें चेतना है। अगर चेतना निकल गई वो तो मुर्दा है, वो मनुष्य थोड़ी कहेंगे। जैसे कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है, बहुत सीरियस पेशेंट है, और जैसे एडमिट हुआ उसी समय मर गया मान लो, तो डॉक्टर कहेगा अभी बॉडी को ले जाओ। आया मनुष्य बन के और गया, हाँ वो वैसे तो शरीर तो पहले भी आया, लेकिन ये नहीं कहेंगे इनको ले जाओ, मनुष्य को बॉडी को ले जाओ। हाँ इस, और उसी को अर्थी कहेंगे, भाई अर्थी शमशान में ले जाएंगे, अरथी जहां रथी चला गया। तो जो रथ ही चला गया, ड्राइवर ही चला गया, तो बाकी वो गाड़ी क्या शोपीस बनानी है क्या, ड्राइवर चाहिए ना गाड़ी अगर चलानी है तो। इसीलिए मनुष्य का मतलब केवल हड्डी मांस का पिंजरा नहीं, पर जो उसमें चेतना है जिसको हम सोल कहते हैं, इंग्लिश में बहुत सुंदर इसका अर्थ दे सकते हैं, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी, जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहेंगे। और जब ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन, ह्यूमन शब्द कहां से आया, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी और फिर उसमें चेतना भर दी, तो मनुष्य हो गया। इसीलिए मनुष्य माना आत्मा और शरीर, पर दोनों के बीच में मैं कौन हूं, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। जैसे शरीर माना गाड़ी, पर उसमें उसका ड्राइवर तो आत्मा हो गई ना। शरीर माना कोई डिब्बी, परंतु उसमें हीरे का महत्व है, हीरा ही नहीं है वो डिब्बी कितनी भी सुंदर हो। शरीर का मतलब एक झोपड़ी, पर उसमें दिया चाहिए ना, अंधेरा होगा झोपड़ी में तो क्या फायदा। शरीर का मतलब मंदिर, पर उसमें मूर्ति न हो तो मंदिर तो खाली पड़ा है, कौन जाएगा। शरीर का मतलब है रथ, उसमें रथी चाहिए उस रथ को चलाने वाला। और शरीर का मतलब वस्त्र, तो वस्त्र धारण करने वाला चाहिए। तो शरीर और आत्मा में इस अंतर को जब हम समझ लेते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। शरीर तो भौतिक है, पांच तत्वों का बना हुआ है, वो तो विनाशी है। जो चीज पैदा हुई है वो खत्म होगी एक दिन। ये तो आदि और अंत को प्राप्त करने वाला है शरीर। ये शरीर अचेतन है, शरीर परिवर्तनशील है। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे, वो आध्यात्मिक है, अविनाशी है, अनादि है, सचेतन है और अपरिवर्तनशील है। उसको न अग्नि जला सकती, न जल उसको भिगा सकता है, न हवा सुखा सकती, आदि आदि ये हम कहते हैं। तो वो शक्ति मैं हूं। तो जब कहते अच्छा ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कई क्या कह देते, अभ्यास के मारे आदत पड़ी हुई है कहने की, तो क्या कह देते, मेरे अंदर एक आत्मा है, ऐसे कह देते, मेरे अंदर एक आत्मा है। अब मेरे अंदर आत्मा है तो मैं क्या हो गया, मतलब मैं शरीर हो गया और मेरे अंदर एक आत्मा है। ड्राइवर कहेगा क्या, गाड़ी कहेगी क्या मेरे अंदर एक ड्राइवर है? ड्राइवर कहेगा मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, पर गाड़ी तो नहीं कहेगी ना मेरे अंदर ड्राइवर बैठा है। तो मैं मेरे अंदर एक आत्मा है, ये कहां तक सही है ये वाक्य। फिर कोई कहेंगे मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। अब शरीर भी मेरा, आत्मा भी मेरी, तो फिर भी मैं कौन, ये मैं कौन, यही पहेली है। और तीसरा वाक्य है मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। तो सही वाक्य कौन सा हुआ, पहला, दूसरा या तीसरा, बताएं हाँ? कौन सा, तीसरा, बिल्कुल। मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं तो ये भी समझना जरूरी, आत्मा है क्या चीज, यही पूछते हैं, आत्मा आखिर है क्या। एक लाइट है, एनर्जी है, वो तो ठीक है, एनर्जी तो वो भी है, लाइट तो ये भी है, लेकिन आत्मा की चेतना का स्वरूप क्या है, क्योंकि आत्मा प्राकृतिक तो नहीं है, जो जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, आदि आदि, ये जो है इसे सिद्ध है वो प्राकृतिक नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक कोई भी चीज होगी वो परिवर्तनशील रहेगी। अग्नि को, हाँ, पानी को अग्नि पर रखेंगे वो पानी उबलता जाएगा, बाफ बनती जाएगी, परिवर्तन। तो परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अगर वो प्रकृति है, प्राकृतिक है, तो परिवर्तन है, पर मैं प्राकृतिक नहीं हूं, मैं अप्राकृतिक हूं। तो क्या हूं मैं? अब कई लोग मन को आत्मा से अलग समझ लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, मन भी आत्मा की शक्ति है, मन ही तो मुख्य है, मन ही आत्मा की शक्ति। और वो क्या शक्ति है, सोचने की शक्ति, ये मन की शक्ति है। किसी भी न्यूरोसर्जन ने जो ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं ना, बहुत कुछ ऑपरेशन आजकल ब्रेन का चलते हैं, क्लॉट निकालते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, लेकिन कहीं भी किसी ने ये नहीं बताया कि मन का लोकेशन कहाँ है मस्तिष्क में। क्योंकि मन प्राकृतिक नहीं है, जो उसका लोकेशन उनको बताए वो चीज दिखाए ये मन है, ये आत्मा के सोचने की शक्ति है। फिर बुद्धि क्या है, बुद्धि वास्तव में निर्णय करने की शक्ति है। सॉरी जरा ये एक फॉन्ट इसमें नहीं है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो सही सही शब्द। और तीसरा है संस्कार। मनुष्य मरता है तो क्या कहता है, आत्मा अपना कर्म ले गई। हाँ क्या कहते हैं, मनुष्य आत्मा अपना कर्म ले गई। तो वो कर्म किस रूप में गए, मनुष्य तो मर गया आत्मा चली गई, वो कर्म तो देह में किए थे तो किसने किए कर्म जो उसके साथ गए, आत्मा के। वो संस्कार रूप में गए, कर्म तो मोटा रूप है। फिर बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते, अपना भाग्य लेकर आया है। तो भाग्य कौन ले आया, शरीर तो यहीं पैदा हुआ माँ के गर्भ में ही वो पिंड बड़ा होगा, तो भाग्य कौन ले आया और कर्म कौन ले गया, बस वही आत्मा को हमें समझना है। तो मन क्या है, विचार शक्ति, विचार शक्ति, सोचने की शक्ति, थॉट एनर्जी जिसको कहते हैं। अब ये थॉट एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है। आप किसी सुनसान स्थान पर जाइए, एक शमशान घाट में चले जाइए, यहाँ भी जहाँ पर कोई नहीं है, मान लो कौन जाएगा वहाँ, लेकिन आप अगर चले गए और सुनसान है, आप वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि बहुत हैवी एटमॉस्फेयर है, वातावरण बहुत ही भारी है, बिल्कुल साइलेंस है, शांति है, लेकिन आपको वो शांति भाएगी नहीं, आप कहेंगे भाई निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं खड़ा होना है। पर एक मंदिर में चले जाइए, यहाँ घंट घड़ियाल ढोल बज रहे हैं, कीर्तन भजन सब आरती सब हो रहा है, पर आपको कितनी शांति मिलेगी, वहाँ आवाज कितना है लेकिन शांति है, और वहाँ शमशान में आवाज बिल्कुल नहीं है तो भी मन कहेगा जाओ जाओ चलो यहाँ से, क्योंकि ये मन की स्थिति है, मन से ही वातावरण बना, संकल्पों से ही वातावरण बना, वाइब्रेशंस बने, चार दीवारें नहीं बनाती है कोई वाइब्रेशंस। मनुष्य जो उसमें है वो अपना क्या कैसे विचार करते हैं उसके आधार से ये वाइब्रेशंस बनते हैं। तो इसीलिए विचार शक्ति क्या है, मन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे बहुत ही कम पहचाना गया है। यदि मन की ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो जीवन का संचालन भी सही होगा। हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं ना, टैप करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको बिजली बनाते हैं, ये हवा को भी बिजली के रूप में कन्वर्ट करते हैं, पानी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते हैं, पानी की शक्ति से बिजली तैयार करते हैं। अब वो जैसे शक्ति है तो मन की शक्ति तो और भी उनसे ऊंची है। अब उस शक्ति को पहचानना है, ये मन को पहचानना, वो ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, और उसको अपने वश में करके, जिसको हम कहते हैं मन को दमन नहीं करो, मन आपका बहुत बड़ा मित्र है, दमन करने से कोई वो दमन होगा नहीं क्योंकि मन का काम ही सोचना है, परंतु उसको सुमन करो, सुमन माना सुंदर विचार मन में लाओ, और फिर अमन होगा, वो मन में शांति होगी, और वो सुंदर विचार, सबसे सुंदर तो परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें अगर मन गया तो ऑटोमेटिकली वो मन इतना सुंदर बन जाएगा। तो मन आपका मित्र है, मन आपका दुश्मन नहीं है, ये मन ही आपको ईश्वर के पास ले जाएगा, तभी तो भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, ये नहीं कहा तन मना भव, तन को मेरे में लगाओ नहीं कहा, मन को मेरे में लगाओ। इसलिए मन को समझना, और फिर मन के ऊपर बुद्धि है, इसीलिए कहते सोच समझ कर कर्म करो। तो सोचने का काम मन का, पर समझने का काम बुद्धि का, और बुद्धि की तुलना किससे की है, एक छन्नी से। अब चाय छाननी है तो चाय पत्ती तो नहीं खाएंगे ना, चाय जो बनी है वो चाय पीनी है तो उसको छानते हैं, जो काम की चीज नहीं है उसको निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार ये समझने की शक्ति है, और इस समझने की शक्ति को दूसरी से भी भेंट करते हैं, एक तराजू। इसलिए न्यायालय में जाएंगे, आपको वहां एक न्याय की देवी दिखाते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तराजू उसके हाथ में है। तो तराजू ये न्याय की निशानी है, सही न्याय मिले बिना किसी पक्षपात के। लेकिन वो तब होगा जब पहले मन एकाग्र होगा परमात्मा में। इसलिए तीन चीजें हैं एक तराजू में। पहले कांटा होता है, वो ऊपर स्थिर होना चाहिए कांटा, तो मन उस ईश्वर में लगे। फिर एक डंडी होती है, वो डंडी हॉरिजॉन्टल, वो भी स्थिर होनी चाहिए, यानी बिना पक्षपात के। पक्षपात अगर होगा तो न्याय सही नहीं होगा। और तीसरा जो पलड़े हैं उसमें केवल वजन, बस हीरा डालो या पत्थर डालो, तराजू को कोई मतलब नहीं है, वो वजन केवल बताएगा। तो बुद्धि माना मूल्यों को वजन देना। तो मूल्यों को अगर वजन देंगे तब ये बुद्धि मन को दिशा देगी सही, और मन इंद्रियों को वश में कर सकेगा। आज उल्टा चलता है, उल्टी गाड़ी है, इंद्रियां मालिक हो गई है, काम क्रोध लोभ वो अहंकार के वश है, और इंद्रियां मन को चला रही है, मन उसी के अंदर अधीन हो गया है और बुद्धि को दबाती है, माना उल्टा हो गया। इसलिए क्या कहते, सोच समझ कर कर्म करो की बजाय उल्टा क्या हुआ, एक्सटेम्पो, इतना गलत काम कर लेते हैं, बंदूक उठाई और गोली मार दी। मानो अब गोली मार दी बिना सोचे समझे कि मैं ये क्या कर रहा हूं, अब वो मर गया, कर्म तो कर लिया वो मर भी गया। फिर समझ में आते है तो मैंने गलत किया, फिर समझ आती है, फिर समझ तो गए कि गलत किया, फिर मन फिर सोचते हैं अभी क्या करें। तो अभी क्या करें पहले सोचो ना, बुद्धि निर्णय करे कि इसका नतीजा क्या होगा, अगर सही नहीं होगा तो मत करो। इसको कहते हैं सोच समझ कर कर्म करना। तो बुद्धि माना एकाग्रता रूपी कांटा, पक्षपात रहित वृत्ति रूपी डंडी और जीवन मूल्य रूपी वजन। अगर ये हम जीवन में अपनाते हैं, ये विवेक शक्ति अगर आती है जिसको अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, इसको समझना माना खुद को समझना। और फिर संस्कार क्या है, ये कर्मों का प्रभाव है, कर्मों का प्रभाव है। आज जैसे रिकॉर्ड होते हैं ना, सीडी होती है, पहले जमाने में रिकॉर्ड्स होते थे, सुई रखी और वो आवाज उसमें होता था वो चलता था, या सीडी कहो जो भी कहो। तो जो भी आत्मा कर्म करती वो संस्कार बनते जाते हैं। इसलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देवात्मा, ये आत्मा के लिए ही कहेंगे, आत्मा की ये स्टेजेस है। सबसे ऊंची स्टेज है देव आत्मा, मानव देव बन जाता है। हम ही देव थे, फिर हमें ही देव बनना है। हम 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन करते हैं, ये भारत की संस्कृति है, कितने हमारे मंदिर है देवताओं के, ये कौन थे, हम ही तो थे। वो सब कहाँ चली गई आत्माएं, वो सब अभी साकार दुनिया में है। इस समय हम सब बैठे हैं, अगर ये कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो वो संस्कार जो आत्मा के है उसको फिर से हमें पहचानना है। हम बताते कैसे, ये इसका प्रमाण है। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा इतनी छोटी आयु में इतना अच्छा गीत गाता है, तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है। छोटे बच्चे अभी कुछ सीखा ही नहीं है, कोई स्कूल में भी नहीं गया, लेकिन कोई ऐसी कला आ गई उसके अंदर, किसी ने नहीं सिखाई। वो कला कहाँ से आ गई, वो पूर्व जन्म से आई है। इसी प्रकार हम देखते हैं कईयों को, इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, एक व्यक्ति मर गया, खत्म, डेड, हार्ट फेल कंप्लीटली, कितना भी किया, लेकिन थोड़े समय के बाद वो जिंदा हो जाता है। कैसे जिंदा हो गया, वो तो चलो हार्ट फिर से काम करने लगा, लेकिन वो ऊपर से देखता है, अपने बॉडी को देखता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, शरीर से बाहर जाकर के शरीर को देखना। अब वो कैसे देखता, आंखें तो शरीर में थी, वो तो पथराई हुई थी, कैसे देखता? ये मन जो आत्मा की चीज है वो शरीर को देखती है, मन भी एक आंख है। आप मन की आंख से पता नहीं कहां कहां देख सकते हो, वो दृश्य आपके सामने आ जाएगा। फिर वो सुनता भी है, डॉक्टर्स जो आपस में बात कर रहे हैं वो सुनता भी है। कैसे सुनता है? वो समझता भी है कि वो बुद्धि है क्योंकि आत्मा में है ना। और फिर उसको अपने बच्चों से, अपने पत्नी से जो प्यार है वो भी उभरता है, वो बॉडी तो डेड पड़ा है तो संस्कार भी है आत्मा में। तो उसके अनुसार वो फिर जब वापस आता है तो कहता है मैंने सब देखा, मैंने सब सुना, ये सब अनुभव वो अपना बताता भी है। पता नहीं कहीं तो कहते एक सुरंग से चला गया, वहां बहुत प्रकाश था, फिर मुझे कहा गया कि आप वापस जाओ, अभी आपका समय नहीं, कई ऐसे अनुभव सुनाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और तीसरा है सम्मोहन के द्वारा भूत या भविष्य भविष्य में जाना। सम्मोहन के द्वारा कई ऐसी मानसिक ऐसी बीमारी कहते हैं, ये मानसिक है, शरीर को कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कहेगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है। तो उनको सम्मोहन के द्वारा पिछले जन्मों में ले जाते। एक अनुभव किसी ने सुनाया था हमें, तो उसने बताया कि मुझे हर वक्त पेट में दर्द होता था, हर वक्त पेट में दर्द। डॉक्टर कहे आपको कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको सम्मोहन में ले गए, और सम्मोहन में जैसे ले गए पिछले जन्मों में ले गए, और पिछले जन्मों में ले गए तो एक जन्म का दिखाया कि वो एक सिपाही था, और उस सिपाही को पेट में गोली लगी थी और गोली से बहुत रिसाव हो गया उसके खून का, वो उसने सम्मोहन में अनुभव किया, और वो फिर रिसाव हो गया और एकदम फिर उसको जैसे डिलीट करते ना कंप्यूटर से, वैसे डिलीट कर दिया मानो। अभी सम्मोहन में कैसे किया लेकिन किया, और उसके बाद इतना अच्छा हो गया, वो दर्द वरद कहाँ चला गया पता ही नहीं। कई भविष्यवाणियां करते हैं, भविष्य देखते हैं, ये भी तो आत्मा के अंदर संस्कार है ना। उस समय वो हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भविष्य को देखते हैं। अब ये सब आत्मा की शक्तियां हैं, इसको कहेंगे कि मैं वो अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा चेतन सत्ता हूं। तो मैं कहां हूं शरीर में? कई समझते हृदय में है, हृदय क्योंकि भावना का स्थान है, हम इसको हृदय जरूर समझते हैं, लेकिन आत्मा का स्थान वही है जहां से पूरे शरीर का संचालन हो, और पूरे शरीर का संचालन तो मस्तक से होता है। तो आत्मा का स्थान कहाँ है, जिसको हम कहते हैं ये भ्रकुटी त्रिकुटी कहते हैं, दो भवों के बीच का स्थान, जहां स्त्रियां तिलक लगाती है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, ये तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा का स्थान यही है, बिटवीन द पीनियल एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आत्मा का स्थान है। लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अप्राकृतिक है। तो जब हम राजयोग करते हैं तो हम शुरुआत ही यहां से करते हैं, जो हठयोग करते हैं ना, बहुत हठयोग करते हैं तो आखिर में शवासन करते हैं, तो शवासन करते 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 इंद्रियों को शिथिल कर देते हैं, और शिथिल करते 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 फिर यहां तक आज्ञा चक्र तक पहुंचते हैं। अब राजयोग में हम शुरू से ही आज्ञा चक्र तक आते हैं, शुरू में, ये और चक्रों की जरूरत ही नहीं, शुरू में, तो बाकी अपने आप सब ठीक हो जाता है। हम जैसे ड्राइवर गाड़ी में पहला फ्रंट दरवाजा खोल करके गाड़ी में बैठता है और बटन दबाता है या सुई या चाबी घुमाता है, इंजन को स्टार्ट करता है, वो सारे गाड़ी में नहीं बैठेगा या पीछे नहीं बैठेगा, आगे उसका स्थान है जहां उसका पूरा कंट्रोल है, वहां बैठा, गाड़ी को अपने वश में किया, कंट्रोल किया। तो आत्मा का जो कंट्रोल, शरीर का जो कंट्रोल है, केंद्र है, वो ये है। तो हम जैसे योग में बैठते, मेडिटेशन करने बैठते, पहला ही संकल्प यही करते हैं, मैं एक आत्मा हूं। और कहां हूं शरीर में? प्रकृति के मध्य एक चमकता हुआ सितारा हूं। तो पहला संकल्प ही ये करें और फिर यहां विराजमान होकर, रथी अपने रथ पर विराजमान होकर के घोड़ों को का वो लगाम हाथ में ले और वश में करे और चले। तो मैं आत्मा इस शरीर में प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूं और इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। मालिक हूं मैं, ड्राइवर मालिक बन करके गाड़ी चलाता है ना, ऐसे थोड़ी कि बेहोश होकर के चलाएगा। मालिक बन के, अथॉरिटी बन करके, शराब पी करके चलाएगा तो क्या होगा? तो मैं अथॉरिटी बन करके देह की इंद्रियों को अपने वश में रख करके मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं। अब नहीं देखना है, नहीं देखूं, देखते हुए भी नहीं देखूं, नहीं सुनना है, नहीं सुनूं, सुनते हुए भी नहीं सुनूं, मेरे हाथ में है। तो ये सारी इंद्रियां मेरे वश में हो गई क्योंकि मैं मालिक यहां बैठा हूं। और जैसे मैंने ये निश्चय किया मैं एक आत्मा हूं, तो मैं कैसी आत्मा हूं? मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं पतित हूं, ये नहीं, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप, एक छोटे बच्चे को भी ज्ञान है सच क्या है, झूठ क्या है। दूसरा झूठ बोलेगा वो पहला बच्चा कहेगा नहीं मम्मी ये झूठ बोलता है, उसको पता है सच क्या है झूठ क्या है। इतना तो ज्ञान हर एक को है, हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा पवित्र स्वरूप है। हर आत्मा जब मन में कोई अपवित्र अशुद्ध विचार चलते हैं तुरंत मन में नफरत आती है खुद के लिए, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो नहीं सोचना चाहिए ये मन में, अंदर में जैसे खाया मन, इसका मतलब मेरा ये असली स्वरूप नहीं है। हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में पवित्र स्वरूप है और जहां पवित्रता है वहीं शांति है। तो हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप है, इसलिए हम कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का मतलब ये कि मैं वो आत्मा हूं जिसका स्वभाव शांति है। और शांति कैसे आएगी? पवित्र विचारों से आएगी। इसलिए जहां पवित्रता है वहीं शांति है, पवित्रता शांति की जननी है। तो जब मन में शांति है तो फिर वहीं प्रेम है, क्योंकि अंदर मन में शांति है तो अंतर में संतोष है। तो संतोष है तो सबके लिए आत्मिक प्रेम है, सबके लिए प्रेम है, क्योंकि सब आत्माएं हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है। और जहां प्रेम है वहीं सुख है, सच्चा सुख जिसको आत्मिक सुख कहते हैं। और जहां सुख है वही वहीं आनंद है। आनंद ये आध्यात्मिक शब्द है, आनंद कोई भौतिक शब्द नहीं है, लेकिन कई लोग इसको न समझने के कारण भौतिक बना देते हैं। आज कुछ खट्टी मिट्टी तीखी चीज ऐसी कोई मुख में डाल दी, जीभ पर रख ली, वाह 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 बड़ा आनंद आ गया खा करके, हाँ स्वाद आया थोड़ा बहुत तो आनंद कह दिया। लेकिन आनंद तो आध्यात्मिक शब्द, हमारे संतों पर ये शब्द पढ़ते हैं, सच्चित आनंद स्वामी, जो सत है चैतन्य वो आनंद स्वरूप है, सत्यानंद स्वामी विवेकानंद। तो जहां विवेक है वह आनंद है, जहां सत्य है वह आनंद है, परमानंद ये सबसे ऊंचा आनंद है। और वो आनंद तब मिलता है जब परमात्मा में मन लगता है, तो उसको परमानंद कहते हैं। तो आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, अन्य शब्दों का फिर भी अपोजिट आ जाएगा, ज्ञान का ज्ञान, पवित्रता का पवित्रता, शांति का शांति, प्रेम का नफरत, सुख का दुख। लेकिन आनंद वो तो आनंद में मग्न स्थिति, ये आत्मा की स्थिति है। और जहां ये छह गुण है वही शक्ति है, वही आत्मा की शक्ति है, उसी को हम मनोबल कहते हैं। ये सात मूल गुण, ये आत्मा के मूल गुण है जिसको इननेट क्वालिटीज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आपको शांति चाहिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर में ही मिलेगी। अंदर में किसके? कोई शरीर को काटने से शांति, सुख, प्रेम ये सब नहीं आएगा, ये आत्मा की शक्ति है। इसलिए जब हम खुद को आत्मा निश्चय करते ये सारे सातों गुण मेरे पास है, तो सात का बड़ा महत्व है। सात दिन का पाठ होता है, सात दिन का जीवन है, सात दिन ही जीवन के होते हैं। सोमवार से रविवार तक आठवां दिन आता नहीं, एक दिन जन्म एक दिन मरण। सात रंग होते हैं, जो कोर कोर कलर्स होते हैं वो सात, जैसे वो इंद्रधनुष के, और उससे फिर जितने भी करो। तो ये सात मूल गुण हैं, ये आत्मा के निजी गुण हैं, ये कहीं बाहर से नहीं लाए जाते हैं। इसीलिए शांति कितनी दूर है हमारे से, केवल एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। और वो सोच है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बस एक सोच और शांति आपके पास है। अगर आप ये कहेंगे मैं तो बहुत अशांत हूं, बहुत अशांत हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती है, चैलेंज है। अगर आपने ठान लिया मैं अशांत हूं, और अगर आपने ये निश्चय किया मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी, भले कोई मार भी डाले आत्मा अशांत नहीं होगी। हमारे बड़े बड़े वीर कैसे फांसी पर गए, लटक गए ना, देश की रक्षा, देश को आजाद करने के लिए खुशी खुशी, जीवन की भी परवाह नहीं की, क्योंकि अंतर में उनको वो शक्ति थी। तो क्या आधार था? क्योंकि आत्मा की शक्ति है वो। इसलिए कोई मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता है, कोई नहीं ले सकता है। इसलिए जब हमने ये निश्चय किया मैं ये आत्मा हूं और मेरे अंदर ये सात मूल गुण हैं, तो मैं आत्मा इन गुणों के आधार से इतनी हल्की बन जाती हूं, जैसे एक फरिश्ता हल्का। तो मन और बुद्धि हमारे जैसे वाहन बन जाते हैं, और मैं आत्मा इस साकार दुनिया से भी परे आत्माओं के लोक में मन बुद्धि से जा सकती हूं। इसीलिए आत्मा को समझना, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उस समय भी वो आत्मिक स्थिति रहती है, क्योंकि ओम शब्द में भी तीन ही अक्षर है ना, अ उ और म। तो अगर हम इसको एक शाब्दिक अर्थ दे तो ओम का भी अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है, अ उ म व ही मैं। तो वह हूं मैं, कौन हूं मैं? ओम, मैं वही हूं जो आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा इन सात मूल गुणों की स्वरूप हूं, इस संसार में मैं मेहमान हूं, ये भी हम कहते हैं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम दो दिन के मेहमान हैं। ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम आत्मा ही हैं जो इस सृष्टि रंगमंच पर एक्टर है। शरीर रूपी वस्त्र है, ये सब हम समझते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम अनुभव करते हैं कि हम ऐसे हैं? क्योंकि आत्मा इस संसार की रहवासी नहीं है, हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। हम क्यों आए हैं इस संसार में, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो कई उत्तर मिलते हैं। कई कहते खाओ पियो मौज करो, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? या दूसरा बताते बस मौज संग्रह करो संग्रह करो, क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं ले जाएंगे, यहीं का यहीं रह जाएगा, हाथ खाली जाएंगे, कुछ नहीं चलना है। लेकिन हम इस संसार में मेहमान हैं, तो मेहमान की नजर कहीं भी पड़ती नहीं है, वो किसी भी चीज को उठाएगा नहीं, भाई ये हमारा नहीं है। तो इस संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है जो हम इसमें मोह रख के बैठे हैं, लोभ रख करके बैठे हैं, क्योंकि हम यहाँ एक्टर है। इसीलिए कहते हैं रंग मंच है, एक्टर है। ये शरीर भी अब मेरा नहीं है, वो भी यहीं छोड़ के जाना है, तो कहाँ से आए हैं? इसीलिए प्रश्न करते, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो आत्मा का, आत्मा रूपी मुसाफिर की मंजिल कौन सी है, ठिकाना कौन सा है, जहां से वो आई है वापस वहीं जाना है। तो हम कहते हैं, जानते हैं कि पांच तत्वों से पार, इस संसार के जो पांच तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये साकार दुनिया है। ये सब चांद, सितारे, सूरज, सूर्य तक, ये ग्रह, ये सब इस साकार दुनिया के हैं। लेकिन हम इसके पार, इसके पार कहाँ, ये पांच तत्वों से पार एक छठा तत्व है, जिसको ही हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो जब हम ब्रह्म कहते हैं, वास्तव में वो ब्रह्म महतत्व हम आत्माओं का घर है। ब्रह्म महतत्व अखंड ज्योति का वो महतत्व है, और उस अखंड ज्योति के महतत्व में हम आत्माएं सितारों की तरह निवास करते हैं। आत्मा अविनाशी है, वो नष्ट नहीं होती है। ऐसे नहीं कि आत्मा बुदबुदा है, वो एक सागर में जाके लीन हो गई, नहीं। हर आत्मा का अस्तित्व अनादि अविनाशी है, लेकिन हम अवश्य उस धाम में रहते हैं, वो हमारा निवास स्थान है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मन से हम वहां पहुंच जाते हैं, और क्या महसूस करते, एक अखंड ज्योति का ब्रह्म महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश। इसलिए हम यहाँ सुनहरा लाल प्रकाश की वो ट्यूबलाइट जलाते हैं, ताकि एक वातावरण बन जाए जैसे मैं आत्मा परम धाम में हूं, और उस धाम में मैं शांति धाम, जिसको मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, ये सब नामों से याद करते हैं, मैं आत्मा वहीं की वासी हूं और इस सृष्टि मंच पर मेहमान बन के आई हूं। तो कई पूछते फिर आए क्यों इस दुनिया में, हम इसलिए आए कर्म करने आए। आत्मा को शरीर चाहिए कर्म करने लिए, जैसे किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत अच्छी ड्राइवर है वो, बहुत होशियार ड्राइवर है, पर गाड़ी भी तो चाहिए ना उसको, केवल लाइसेंस की पूजा तो नहीं करेगा ना, गाड़ी चाहिए तभी तो ड्राइविंग करेगा वो। इसलिए शरीर गाड़ी है, ये वस्त्र है, तो ये आवश्यक है कर्म करने लिए, क्योंकि आत्मा इनके बिना कर्म नहीं कर सकती है। एक एक्टर है, बहुत सुंदर एक्टर है, लेकिन मंच चाहिए ना, उसी अनुसार वस्त्र चाहिए। कई ये बहुत अच्छी डांसर बच्चे आते हैं यहाँ, बहुत अच्छी डांस करते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा तुम करो, नहीं बहन जी हम ड्रेस नहीं लाए हैं, वो डांसिंग के लिए वो ड्रेस चाहिए, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। तो शरीर एक वस्त्र है, और ये संसार रंगमंच पर पाठ बजाया, पाठ बजा के वापस जाना है, यहाँ हम नहीं रहेंगे परमानेंट। कोई भी एक्टर मंच पर कोई परमानेंट थोड़ी होता है, उसको अपना घर पता है। लेकिन हम आत्माएं अपने घर को भूल गए, बहुत लंबी यात्रा की है ना, कई जन्मों की यात्रा, अब आत्मा को अपना घर का पता चल गया। तो कौन हूं मैं, एक ज्योति बिंदु आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का स्वरूप, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है। जैसे परिचय किसी का दिया जाता है ना, उसका नाम पूछेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, कहां तक पढ़ाई की, क्या डिग्री ली, ये सब बायोडाटा में आता है। फिर उसका दो एड्रेस होती है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। तो आत्मा की भी दो एड्रेस है, एक एड्रेस तो ये है और दूसरी एड्रेस परम धाम है, हम वहीं के रहवासी है और वहीं जाना है। और क्यों आए यहाँ, क्या हमारा व्यवसाय रहा इस सृष्टि रंगमंच पर आना, ये देह रूपी वस्त्र धारण करना और पाठ बजाना। अब पाठ बजाया, अब वापस आत्मा को अपने घर जाना है। तो कैसे जाएंगे, ये देह अभिमान रूपी वस्त्र को त्यागना है, इसको भूलना है। जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये डिटैचेबल है ना, हम जब चाहे निकाले, जब चाहे दूसरा पहने, हमारे हाथ में है। अब वो शरीर रूपी वस्त्र को इस प्रकार तो नहीं निकाल सकते, कोई और ले सकते हैं, लेकिन इसको इससे हम डिटैच तो हो सकते हैं। वस्त्र ढीले होंगे तो ढीले कर देते ना, भाई पड़े हैं लेकिन ढीले हैं। तो ये देह रूपी वस्त्र को भी ढीला करना है, इसको होल्ड नहीं, न्यारा बनना है। तो कैसे ढीला करेंगे? चिंतन से। क्या चिंतन है? न मैं ये शरीर हूं, न मैं ये अभिनय हूं। मैं सेठ हूं, साहूकार हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं, इंजीनियर हूं, ये जो भी हूं, ये मैं वास्तव में नहीं हूं। ये तो परिवर्तनशील है। आज बड़ा जज है कोई, लेकिन कल रिटायर्ड हो गया, तो भले लिखेगा जज, फिर लिखेगा रिटायर्ड तो लिखना पड़ेगा ना। तो कितना भी सुप्रीम कोर्ट का ही जज क्यों ना हो, इसीलिए वो सब परिवर्तनशील है। पर जो अविनाशी चीज है, वो मैं एक ज्योति बिंदु चमकता हुआ आत्मा सितारा हूं। मैं शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूं। अब आप ये अनुभव कर सकते हैं, मैं यहाँ विराजमान होकर के इस शरीर को अलग महसूस करूं और ये सब अलग मेरे से न्यारे है, मैं इनसे डिटैच हो गया। तो जैसे वो शवासन करते समय शिथिलता लाते हैं, हम कहते हैं शिथिलता लाने की जरूरत नहीं, तो चेतन में है ना, आत्मा इसमें है तो है ना, सब श्वास ले रहे हैं, लेकिन इसे न्यारा बन सकते हैं मन से। और यहाँ अपने आप को स्थिर करके मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। अब चलिए आपका आपको अभ्यास कराते हैं, बैठिए सीधा। सीधा बैठेंगे, सीधा बैठकर स्वचिंतन करें। कोई मंत्र जाप की भी जरूरत नहीं है, स्वचिंतन चाहिए, आत्मचिंतन जिसको हम कहते हैं। बुद्धि मन को चिंतन देती है और मन इंद्रियों को वश में रखता है। बिल्कुल स्थिर, आपका जो श्वास है वो नॉर्मल चलता रहे और अपने मन को भी बहुत हल्का कर दे। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को कैसे सिकोड़ लेता है और न्यारा बन जाता है, तो ये देह की इंद्रियां भी ऐसे मुझसे अलग है। और अंतर में बहुत खुशी लाएं, क्योंकि आप बहुत बड़ा खजाना पा रहे हैं। ये खजाना है, अपने गुणों का खजाना अनुभव करेंगे आप। अगर आंखें खुली रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, खुली रख सके तो। और कहां देखेंगे? सामने एक बिंदु, या सामने जो आपके सामने बैठे हैं उनसे भी प्रेरणा ले सकते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं आपको संकल्प देती हूं, वो अपने आप को देंगे आप? अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्यों आया इस जगत में? मुझे क्या करना है? कहां जाना है? इन प्रश्नों का उत्तर अभी जो आपको मिला वो खुद को ही दे। मैं एक आत्मा हूं, एक दिव्य ज्योति हूं। प्रकाश पुंज एक चमकता हुआ सितारा हूं। महसूस करें, अपने को बहुत सूक्ष्म अनुभव करें और शरीर से हल्के होते जाएं। मस्तक पर दो भवों के बीच भ्रिकुटी के मध्य विराजमान एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं। मैं आत्मा सत्य हूं। चैतन्य हूं। शांत स्वरूप हूं। शक्ति स्वरूप हूं। इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। यह शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय कर रही हूं। मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए हैं, अनेक अभिनय किए हैं। लेकिन मेरा मूल अस्तित्व, मूल व्यक्तित्व एक आत्मा है। मैं वो चेतन सत्ता हूं अब इस देह रूपी वस्त्र से न्यारा होकर 5 तत्वों से पार चला जाऊं, मन और बुद्धि से। एक अखंड ज्योति का एक महत्त्व है जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वो मुझ आत्मा का धाम है। मन और बुद्धि रूपी पंख एक सेकंड में हमें वहां पहुंचा देते हैं। महसूस करें, एक अनंत शांति का धाम। अनंत शक्ति का धाम। बेहद सुनहरा लाल प्रकाश चारों ओर व्याप्त है। यहां मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांत। शांति मेरा मूल स्वभाव है। शांति की शक्ति मुझ में विद्यमान है। एक बेहद शांति, बेहद प्रकाश की दुनिया। कितनी निरसंकल्पता है, यहां मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं। शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप हूं। शक्ति स्वरूप हूं। खो जाओ इस गुण में। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। शांति की बिंदु, शांति के सिंधु में समा गई। ये सुंदर अनुभव करें। एक निरसंकल्प अवस्था, निर्बंधन अवस्था। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अति शुद्ध और पवित्र हूं। अनुभव करें इस बेहद शांति का। चले जाइए शांति के सागर के तले में। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव को पहचान चुकी हूं। अब इसी स्वरूप का अनुभव कर वापिस लौटे फिर से साकारी दुनिया में कर्म क्षेत्र पर। अपने शरीर में भ्रकुटी पर विराजमान हो जाए और इन कर्म इंद्रियों द्वारा फिर से कर्म करें, पर एक साक्षी दृष्टा बनकर, न्यारा प्यारा बनकर इस रंग मंच पर अभिनय करें। शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।
ओम शांति। 2 मिनट सभी बैठे रहे। दीदी ने बहुत सुंदर रीति से हमको अपने आप से मिलाया है, खुद से मुलाकात कराई है। तो शब्द कहना चाहूंगी, जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की मुलाकात कर ली। और इसी का ही सुंदर अनुभव दीदी जी ने हम सबको कराया है। और यही रूहानी रिश्ता अगर खुद के साथ जुड़ जाता तो औरों के साथ हमारे रिश्ते भी सुमधुर होते जाते। ऐसे हमारी आदरणीय शिलू दीदी का हम सभी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।